रेहान की बात सुनकर रश्मि के लबों पर शर्मीली सी मुस्कान फैल गई, जिसे देखकर रेहान मुस्कुरा दिया। ऐश्वर्या सब समझ रही थी, उसने मुस्कुराकर हामी भरी, फिर अपनी असिस्टेंट को शान और आरवी के साथ भेजकर खुद दोनों को उस सेक्शन में ले गई जहां दुल्हे दुल्हन के आउटकिट्स का कलेक्शन लगाया गया था। आरवी जाना तो नहीं चाहती थी, पर लोगों के सामने कोई सीन क्रिएट करके शान की बेइज्जती भी नहीं करना चाहती थी, और ये शान भी समझ गया था। मन ही मन सोच भी रहा था कि कितना अंतर है दोनों में। उसने तो अपने गुस्से में भरी महफिल में आरवी की इतनी बेइज्जती की थी, और आरवी चंद लोगों के सामने भी उसकी इज्जत बनाए रखने के लिए अपना गुस्सा और नाराज़गी भूलकर उसके साथ सहज व्यवहार करने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर उसका मन आत्मग्लानि से भर गया और उसने आरवी का हाथ थाम लिया। आरवी ने चौंकते हुए उसे देखा और शान का शर्मिंदगी से झुका सर देखकर और ज़्यादा हैरान हो गई। आई एम सॉरी आरवी, उस दिन पार्टी में मैं... वो अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि आरवी ने उसकी बात काटते हुए धीमे स्वर में कहा, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। आरवी को शान की बात सुनकर जो पार्टी में हुआ था वो सब याद आ गया था और उसका गला भर आया था, जिसे महसूस करते हुए शान चुप हो गया। आरवी की आंखें छलक आई थीं। उसने बड़ी मुश्किल से आंसुओं को बाहर आने से रोका और शान से अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गई। शान ने गहरी सांस छोड़ी और वो भी उसके साथ चलने लगा। असिस्टेंट दोनों को एक बड़े से हॉल में लेकर गई जहां हर तरह के खूबसूरत आउटफिट्स थे। आधे पार्ट में जेंट्स का सेक्शन बना था तो आधे में लेडीज़ के कपड़े थे। देखने में ही पता चल रहा था कि यहां सब महंगी ड्रेसेस ही हैं। आरवी को पिछलेदार वाला भी याद था कि कितनी कॉस्टली ड्रेसेस मिलती हैं यहाँ, इसलिए असिस्टेंट के दिखाने पर वो सब में कोई ना कोई कमी बताकर उन्हें रिजेक्ट करती गईं। अपने आउटफिट सिलेक्ट करते हुए शान का पूरा ध्यान था उस पर। कुछ देर तक यही चलता रहा, फिर शान ने आरवी की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने इशारे से असिस्टेंट को जाने को कह दिया। अब वहाँ बस वही दोनों थे। आरवी अब भी बेमन से कोई एक लहंगे को देख रही थी। तभी उसके कानों में शान की आवाज़ पड़ी, तब से देख रहा हूँ, बस देख ही रही हो, देखने आई हो या कुछ लेना भी है? आरवी उसकी आवाज़ सुनकर एकदम से चौंक गई और पलटकर देखा तो शान उसके पीछे ही खड़ा था। आरवी एकदम से घबरा गई थी, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और चेहरा फेरते हुए बोली, लेने के लिए कुछ पसंद भी आना चाहिए। इतनी खूबसूरत ड्रेसेस में तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? शान ने आसपास निगाहें घमाते हुए सवाल किया। वहीं उसकी बात सुनकर आरवी ने दूसरी तरफ जाते हुए बेरुखी से जवाब दिया, नहीं आ रहा, पसंद तो नहीं आ रहा, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ सब बहुत महंगा होता है और फालतू पैसे बर्बाद करने का मुझे कोई शौक नहीं। आरवी ने घूर कर उसको देखा और जैसे ही जाने लगी शान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं लेना और पैसे बचाने हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर आकर खाली हाथ जाना ठीक नहीं, अब आई हो तो कुछ ले ही लो। आरवी ने तुरंत ही साइड से निकलते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं लेना कुछ भी। तो मैं दिला दूँ? शान ने उसके पीछे आते हुए पूछा। आरवी ने पलट कर उसको देखा तक नहीं और यूं ही कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, ज़रूरत नहीं। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। शान एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो आरवी ने उसे घूरते हुए कहा, फ्रेंड की शादी है, मेरी नहीं, जो है वही पहन लूँगी मैं, आपको ज़्यादा मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे फ़िक्र नहीं करूँ, कुछ तो ले लो, मैं पेमेंट कर दूँगा ना, शान ने लगभग उससे रिक्वेस्ट की। उसकी बात सुनकर आरवी ने एक बार फिर उसको घूरते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास है, और अगर चाहिए हुआ तो इतनी हैसियत है मेरी कि अपनी ज़रूरतें और शौक़ खुद पूरे कर सकूं, किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं मुझे। ये एहसान नहीं बल्कि फ़र्ज़ है मेरा, पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हारी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। शान की बात सुनकर आरवी को एक बार फिर पार्टी वाली बात याद आ गई और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने गुस्से में पर धीमे स्वर में कहा, हाँ वही पत्नी जिसकी इज्जत का आपने भरी महफिल में तमाशा बना दिया था। आरवी, वो गलती थी मेरी, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ उसके लिए। शान के चेहरे पर शर्मिंदगी और आत्मग्लानी के भाव उभर आए थे, पर आरवी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने उसको घूरते हुए कहा, हर गलती की माफ़ी नहीं हुआ करती, पर मैं तुम्हारी माफ़ी पाकर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ा। शान ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, जैसे संकल्प ले रहा हो। उसकी बात सुनकर आरवी ने बेरुखी से अपना चेहरा फेर लिया। शान ने उसकी बाँह थामी और उसको वहाँ से लेकर जाने लगा। पहले आरवी हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, फिर आसपास के स्टाफ की नज़रें खुद पर टिका देखकर वो शांत हो गई। शान उसे लेकर जैसे ही फैशन हाउस की पार्किंग में पहुंचा, जहां इस वक्त कोई नहीं था, आरवी ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, क्या बदतमीजी है ये, ऐसे कहां लेकर जा रहे हैं आप मुझे? शान ने पलटकर उसको देखा और शांत लहजे में बोला, तुम्हें तुम्हारे पसंद की जगह लेकर जा रहा हूँ ताकि अपनी पसंद से अपनी फ्रेंड की शादी के लिए कपड़े ले सको। और अब यहाँ इनकार करने की कोशिश भी मत करना, वरना अभी घर जाकर माँ को सब बता दूंगा। एक बार फिर शान ने अनुपमा जी की धमकी दी, जिससे आरवी खींच उठी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही शान ने एक बार फिर कहा, गलत समझने की जरूरत नहीं है, मैंने हमारे रिश्ते के बारे में बताने की बात नहीं की थी, बल्कि ये बताने की बात की थी कि मैंने तुम्हें इतना कहा पर तुम अपने लिए कुछ लेना नहीं चाहती, और मल्होत्रा खानदान की बहू अपनी बेस्ट फ्रेंड की और इकलौते देवर की शादी में पुराने कपड़े पहनेगी तो मेरी इमेज पर कितना गलत असर पड़ेगा। तब माँ खुद तुम्हें शॉपिंग करने को कहेंगी और तुम इनकार भी नहीं कर सकोगी, इसलिए इतना सब करवाने से बेहतर है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। वैसे भी रास्ते में मैं खाने ही जाऊंगा तुम्हें, सही सलामत तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। इतने वक्त साथ रहने पर इतना तो विश्वास होगा ही तुम्हें मुझ पर। शान अपनी बात कहकर चुप हुआ और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया। आरवी कुछ पल सोचती रही, फिर मुंह फुलाए अंदर बैठ गई। कुछ देर बाद शान ने लोकल मार्केट के पास कार पार्क की और वहीं से अपने और आरवी के लिए कपड़े लिए। उसके बाद वापस फैशन हाउस पहुंच गया, जहां दोनों उनका इंतजार कर रहे थे। रश्मि के कहने पर सबने साथ में लंच किया, फिर उन दोनों को घर छोड़कर दोनों लड़के वहां से निकल गए। अंशु अब तक आ चुकी थी। आरवी ने तीनों को कपड़े दिखाए जो वो अपने और उन सबके लिए लाई थी, फिर ब्लाउज सिलने के लिए दे आई। उसके बाद वो अंशु के साथ व्यस्त हो गई। आज रात को शान का फोन नहीं आया, जिससे आरवी कुछ परेशान हुई पर फिर सर झटक कर सो गई। वहीं शान के दिलो दिमाग पर आरवी की बातें छाई हुई थी और वो तरीका ढूंढ रहा था कि कैसे उसकी नाराजगी दूर की जाए। खैर, रात गुजरी, अगला दिन शुरू हुआ और यूं ही तीन दिन बीत गए। इन दिनों शान कई बार अंशु के बहाने घर गया, जिससे अनुपमा जी के मन में दोनों को लेकर जो शक बन गया था वो खत्म हो गया और वो चिंता मुक्त हो गई। पर आरवी की चिंता बढ़ी हुई थी, लेकिन शान ने एकदम नॉर्मल ही व्यवहार किया। काम लायक बात की, पर बातों में उसका प्यार और परिवार झलकता था, जिससे आरवी खींच जाती थी पर अनुपमा जी के सामने कुछ कह नहीं पाती थी। सोने से पहले शान का फोन आता ही था और दिन में भी वक्त मिलने पर वो फोन कर लेता था। कहीं ना कहीं अब आरवी को इसकी आदत होने लगी थी, पर अब भी नाराजगी थी या उससे ज्यादा डर था। जो भी था, पर अब भी आरवी की बेरुखी जारी थी और शान के मनाने की कोशिशें भी बदस्तूर जारी थी।
रेहान के मॉम डैड और सब रिलेटिव्स आ चुके थे। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही थी। सब उसी बिल्डिंग में ठहरे थे। सारे अरेंजमेंट शान देख रहा था। आखिर उसके दोस्त की शादी थी तो कोई कमी कैसे रहने दे सकता था वो। दूसरे तरफ रश्मि का घर भी मेहमानों से भर चुका था। आरवी भी अंशु, अनुपमा जी और छाया के साथ वहां आ चुकी थी और शादी के कामों में हाथ बटा रही थी। छाया के होने से काफी मदद मिली थी, तो अंशु के वजह से घर का माहौल खुशनुमा रहता था। सृष्टि की तरफ से अर्जुन को भी इन्विटेशन दिया गया था। पहले तो वो अमरजीत जी से मिलने चली जाती थी, पर फिर भाई की शादी थी तो उसको वक्त नहीं मिलता था। इसलिए करीब पिछले हफ्ते भर से वो ना तो अमरजीत जी से मिली थी और ना ही अर्जुन से मिली थी। आज हल्दी थी। रेहान के घर में हल्दी की तैयारी हो चुकी थी। रेहान भी तैयार हो चुका था। उसके तैयार होने के बाद शान कार लेकर वहां से निकल गया। दूसरे तरफ रश्मि के घर पर भी हल्दी की तैयारी जोरों शोरों से हो रही थी। उसको तैयार करने के बाद आरवी खुद तैयार हुई, अंशु को तैयार किया, उसके बाद अंशु के साथ नीचे आ गई। बाकी सब भी तैयार हो चुके थे। आंगन में बीच में जगह बनाई गई थी और उस जगह को हल्दी के लिए तैयार किया गया था। आरवी रजनी जी के अनुसार हल्दी की सामग्री वहां रख रही थी, तभी अचानक उसके सीने में मौजूद दिल जोरों से धड़क उठा। बढ़ी धड़कनों ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अभी वो स्थिति समझ भी नहीं सकी थी कि अंशु की मीठी से आवाज उसके कानों में पड़ी, डैडा। ये संबोधन सुनकर आरवी की धड़कनें थम सी गईं। शान यहां आएगा इसकी उम्मीद नहीं थी उसे, तो उसने तुरंत पलट कर देखा। सामने से लाइट येलो चिकन का कुर्ता पायजामा पहने शान चला आ गया था। माथे पर बिखरे बाल, चेहरे पर हल्की बियर्ड्स, कुर्ते की बाजुओं को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था, जिससे बाएं हाथ में बंधी ब्रांडेड वॉच नजर आ रही थी। उसके गठीले बदन पर कुर्ता खूब सज रहा था और ट्रेडिशनल सिंपल से लुक पे वो कहर ढा रहा था। आरवी के तो होश ही उड़ गए उसे देखकर। वहीं शान की तो कदम जहां थे वहीं ठहर गए और धड़कनें थमसी गईं। निगाहें आरवी के चांद से सोने चेहरे पर ठहर गईं। आरवी ने येलो कलर की चौड़े बॉर्डर वाली प्लेन साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज कट स्लीव था। लंबे सुनहरे बालों को जोड़े में बांधा हुआ था और रश्मि की जिद पर जोड़े पर गजरा भी लगाया था। जोड़े से निकलती लटे उसके गालों पर अटखेलियां दिखा रही थीं। मांग में सजा सिंदूर दूर से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था। गले में बस मंगलसूत्र ही पहना था। माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में गहरा काजल और लबों पर लाइट लिपस्टिक, हाथों में भरी भरी पीली चूड़ियां, पैरों में पाजेब। बिना मेकअप के भी 16 श्रृंगार किए आरवी इतनी हसीन लग रही थी कि शान इसके रूप की मोहनी में खोकर रह गया था।